आप सुन रहे हैं रेडियो साई प्रशांति निलियम से हिंदी प्रसारण। इसके अंतर्गत अब प्रस्तुत है प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज के इस प्रसारण में हम सुनेंगे सन 1957 में वेंकटगिरी के सम्मेलन के कुछ और अनुभव। आज के प्रसंग में वो विवरण प्रस्तुत हैं जब बाबा ने इस सम्मेलन में आए योगियों और सन्यासियों को साक्षात्कार दिया, उनके अत्यंत निजी अनुभवों के बारे में चर्चा कर उन्हें अपने सानिध्य और दिव्यत्व का आनंद प्रदान किया। आइए आनंद लेते हैं ऐसे अलौकिक प्रसंगों का।
अगले दिन प्रतिनिधियों की एक विशेष सभा को पृथक से समझाते हुए बाबा ने उनसे अपील की कि वे एकाग्र चित्त होकर केवल और केवल अपने गुरु के प्रति भक्ति का पोषण करें और अपने जीवन में अपने आचरण से दिव्य जीवन संस्था के आदर्शों को प्रदर्शित करें जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। इसके बाद बहुत से लोगों के आ जाने से ये सभा एक सार्वजनिक सभा में बदल गई और इस सार्वजनिक सभा को बाबा ने एक घंटे तक संबोधित किया। उन्होंने समर्पण तथा भक्ति के पथ पर सभी को चलने का संदेश दिया। बाबा ने पूछा कि आप भगवान के हाथों में क्या बनना पसंद करेंगे, और उन्होंने स्वयं ही उत्तर देते हुए कहा, बांसुरी अर्थात वंशी। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग अपने जीवन को निश्चल तथा सरल कर अहंकार तथा मोह रहित होकर बांसुरी के समान भीतर से खाली हो जाएं और केवल भगवान के नाम की ही श्वास लेते रहें। तब भगवान स्वयं उस मुरली को हाथों में लेकर उसमें अपनी श्वास भर देंगे और जीवन सनातन आनंद के मधुर गीत में परिवर्तित हो जाएगा। साधना की एक स्थिति सायुज्य होती है। सायुज्य के विषय में प्रवचन करते हुए स्वामी श्री सदानंद जी ने कहा, मैं और कुछ आप लोगों के सामने बोल नहीं सकता। बाबा का सामीप्य मैंने प्राप्त किया है, उनके चरणों में अपनी मन बुद्धि समर्पित की है, वे ही मेरे द्वारा आपको संबोधित कर रहे हैं। तत्पश्चात प्रस्थानत्रय नामक उपनिषद, भगवत गीता तथा ब्रह्म सूत्र, इन तीनों के तेलुगु भाषा में व्याख्यानकार एक महापंडित उठ खड़े हुए, कोहम। इस कठिन विषय को ही उन्होंने चुना, किंतु वे पुस्तकीय ज्ञान का बोझ उठाकर भटकते हुए शुष्क मायावादी नहीं थे। बाबा के कहे हुए मुरली समान हो जाओ इस उपदेश ने उनके मन को झंकृत कर दिया था। वह उन्हें जचा और उन्होंने उस पर कुछ देर तक प्रवचन किया। कहते हैं कि उनके उस कवि हृदय को वे शब्द अति हर्षदायक प्रतीत हुए। इसके अतिरिक्त सबके समक्ष स्वयं की आलोचना करने का विशाल हृदय भी था उनका। उन्होंने इस सम्मेलन में आने के पूर्व अपने मन में उठे विचारों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने विषय में आपको एक बात बतानी ही चाहिए। वेंकटगिरी से जब निमंत्रण मिला तब मैंने श्री सत्य साई बाबा से मिलने के लिए इस सम्मेलन में आने के लिए निश्चय किया, क्योंकि मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था और मैं इस अवसर का लाभ लेकर जो कुछ सुना था उसकी परीक्षा लेना चाह रहा था। मैं सच कहूं तो संक्षिप्त में मैं उन्हें परास्त करने आया था, परंतु मैं ही परास्त होकर जा रहा हूं। मुझे यह स्वीकार करने में बेहद खुशी भी हो रही है और अपनी इस त्रुटि के लिए मैं बाबा से क्षमा प्रार्थी भी हूं। ये एक और ऐसी घटना है जिसमें बाबा की उपस्थिति के तेज से गलतफहमी का कोहरा दूर हो गया। वेंकटगिरी से वापस रवाना होने से पहले बाबा वहां आए हुए सभी साधुओं और विद्वानों से बड़े खुलकर मिले। वे उनके मध्य स्वतंत्रता पूर्वक गए एवं उन्होंने प्रत्येक को लंबा साक्षात्कार दिया। स्वामी सच्चिदानंद ने बताया कि साक्षात्कार के लिए मुझे दूसरे क्रम पर बुलाया गया। बाबा ने प्रेम से मुझे गले लगाया और कहा कि वे मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे 37 वर्ष पूर्व की एक घटना की याद दिलाई जिसमें मुझे योग साधना के द्वारा एक दुर्लभ योगिक दृष्टि प्राप्त हुई थी। उन्होंने मुझे बधाई देते हुए कहा कि सतत प्रयासों से तुम्हें वो अनुभव हुआ था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मुझे तत्क्षण ये भी कहा कि उतने उच्च स्तर पर पहुंचकर फिर तुम आश्रम की स्थापना, उसके लिए धन की व्यवस्था, लोगों से मिलना और योजनाएं तथा कार्यक्रम बनाने में समय क्यों लगाने लगे। मैंने अपनी इस वर्तमान गतिविधियों को अंततः लोक कल्याण के लिए संपन्न करने की दलील दी। इस पर हंसकर बाबा ने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं कि योगी ज्ञान से उत्पन्न तरंगों से भी शुभ विचारों की तरंगें सभी की ओर व्याप्त होकर लोक कल्याण करती हैं। महात्माओं का सदचिंतन भी सब प्रकार की बाधाओं को दूर कर लोगों का मन सुधार सकता है। इसके बाद स्वामी सच्चिदानंद ने यह भी बताया कि बाबा ने उन्हें कहा कि अब अपनी पूर्व योग साधना को एकांत में बैठकर पुनः आगे बढ़ाओ। तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हारी संपूर्ण देखभाल करूंगा। स्वामी सच्चिदानंद कहते हैं कि इस प्रकार का दृष्टिकोण कभी भी मेरे समक्ष आया ही नहीं था। बाबा ने एकदम सुस्पष्ट और प्रामाणिक शब्दों में मुझे रास्ता दिखाया और उनकी करुणा तथा प्रेम ने मुझे अभिभूत कर दिया। मैं आश्चर्यचकित भी था कि मेरे 37 वर्ष पुराने उस गुप्त अनुभव के बारे में भी बाबा जानते थे, जबकि ये अनुभव बाबा के जन्म के भी वर्षों पूर्व था। मैंने कुछ साहस बटोर कर उनसे यही प्रश्न किया कि वे अपने जन्म से पहले के मेरे अनुभव को कैसे जानते हैं। बाबा ने प्रश्न का उत्तर प्रश्न से ही दिया। बाबा ने कहा, क्या मैं जन्म लेता हूं, क्या मेरी मृत्यु होती है? निसंदेह उन सभी के लिए ये अनुभव अद्वितीय थे, जैसे साक्षात्कार मिलना, उनकी गहरी शंकाओं की पहचान होकर उनका अचूक निवारण होना, बाबा के द्वारा अपने अनुग्रह की वर्षा का आश्वासन मिलना, आध्यात्मिक उन्नति में उपलब्धियों का गहराना, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण था बाबा की सर्वव्यापकता व सर्वज्ञता से परिचित होना। ये था योगियों का योगेश्वर से साक्षात्कार। जो जीतने आए थे वे हार कर गए, और जो संप्रभुता दिखाने आए थे वे समर्पित होकर वापस गए, लेकिन भगवान के प्रेम पाश में बंधकर आनंद और प्रेम की भावना के साथ वापस गए, न कि पराजय की। मगर जब बाबा पुट्टपर्ती वापस आए तो स्वामी सच्चिदानंद और स्वामी सदानंद ने बाबा के साथ दिव्य सानिध्य को चुना और वे भी पुट्टपर्ती साथ आए। एक शाम बाबा स्वामी सदानंद को लेकर प्रशांति निलियम की पहाड़ियों के पीछे के प्राकृतिक झरने की ओर गए। उस झरने के पास बैठकर बाबा चैतन्य की व्याख्या कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मनुष्य, वनस्पति और शिलाओं में सभी में चैतन्य व्याप्त है। स्वामी सदानंद इसी संदर्भ में उपनिषदों के उद्धरण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि ये प्राचीन ग्रंथों में भी वर्णित है। अचानक स्वामी का स्वर प्रभावपूर्ण हो गया और उन्होंने स्वामी सदानंद से कहा, तुम उन्हें प्राचीन कहते हो, मैं इन सभी को जानता हूं, मैं काल तथा स्थान से परे हूं। इसके बाद वो चर्चा शैव सिद्धांत और लिंग की आराधना पर मुड़ गई, क्योंकि स्वामी सदानंद ने दक्षिण भारत के शैव मत के उद्भव व इतिहास पर एक ग्रंथ लिखा था। उस दिन तमिल नववर्ष था। स्वामी ने अपना खाली हाथ हवा में घुमाकर पोली नामक एक मिठाई सृजित की और वहां बैठे सभी भक्तों को दी। तमिल गृहिणियां इस मिष्ठान को इस पवित्र दिन बनाती हैं। स्वामी इसके उपरांत कुछ दिनों के लिए कुड़ई केनाल गए एवं स्वामी सदानंद व स्वामी सच्चिदानंद भी उनके साथ गए। पहाड़ों पर बिताए हुए लगभग 6 हफ्तों में इन सन्यासियों को बाबा के अनुग्रह की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति के अवसर मिले। स्वामी सच्चिदानंद ने 29 जून सन 1957 को तपोवन के शुभारंभ के अवसर पर बताया कि उनके व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर वे निसंदेह जान गए हैं कि बाबा सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सभी की अंतरात्मा में स्थित परम चैतन्य प्रभु हैं।
आज हमने सुना कि किस प्रकार महापंडित और ज्ञानवान योगी जनों को भी भगवान ने अपने बड़े ही प्रेम और सनातन आत्मिक संबंध से मोहित कर लिया। जो जीतने आए थे वे समर्पित होकर गए, जो संशय के साथ आए थे वे शरणागत होकर ज्ञान की पिपासा और दैवीय सानिध्य की आकांक्षा में डूब गए। स्वामी सच्चिदानंद और स्वामी सदानंद तो अपने अपने निवास स्थान जाने के स्थान पर बाबा के प्रेम पाश में बंध कर बाबा के साथ ही उत्तपर्ती आ गए। हमने यह भी सुना कि बाबा ने तमिल नववर्ष के उपलक्ष्य में मिठाई सृजित कर सभी भक्तों को दी। निश्चित रूप से जब भगवान मिल जाएं, तो उनके साथ का इंतजार सभी को रहेगा। किसी ने कहा है, दर्शन की अगर ललक है तो इजहार क्यों न हो, प्रभु के निकट जाने का इंतजार क्यों न हो। जब प्रेम की उस डोर ने झकझोर दिया हो तो दौड़ते कदमों में रफ्तार क्यों ना हो। जी हां, योगियों को जब योगेश्वर मिल गए तो मानो उनके कदमों को एक नई रफ्तार और उनके आध्यात्मिक पंखों को एक नई उड़ान मिल गई। मन को मोह लेने वाले ऐसे ही प्रसंगों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय साईं राम।